नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन में आज आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेलों की बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच जारी। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। हॉकी इंडिया ने पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की। 46वीं जूनियर राष्ट्रीय रोविंग प्रतियोगिता गोरखपुर में संपन्न हुई। अश्मिता चलिहा मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 के क्वार्टर फाइनल में पहुंची और नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन कल से झारखंड के रांची में शुरू। तो शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को आईपीएल के रोमांचक मुकाबलों के आसमान छूते रोमांच के साथ, जहां आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 11वें ओवर में बिना कोई विकेट खोए 117 रन बना लिए हैं। चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। गुजरात की टीम जो है वो पहले ही प्लेऑफ का अपना टिकट कटा चुकी है, जबकि चेन्नई चाहेगी कि आज का मैच जीता जाए, अच्छे अंतर से जीता जाए और टॉप 4 में अपनी पकड़ मजबूत रखी जाए। इससे पहले कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस पर जीत दर्ज करते हुए प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को बरकरार रखा। सुनते हैं इस मैच का पूरा हाल।
ईडन गार्डन्स में कल करो या मरो के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की दौड़ में खुद को बनाए रखा है। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी मुंबई इंडियंस ने 8 विकेट पर 147 रन बनाए। कॉर्बिन बॉश ने टीम के लिए 18 गेंद में सर्वाधिक 32 रन की नाबाद पारी खेली। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 26 रन का योगदान दिया। कोलकाता की ओर से सौरभ दुबे, कैमरन ग्रीन और कार्तिक त्यागी ने 2-2 विकेट लिए। 148 रन का सामान्य लक्ष्य केकेआर ने 19वें ओवर में हासिल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। कोलकाता की ओर से मनीष पांडे ने 33 गेंद में 45 और रोबमैन पॉवेल ने 30 गेंद में 40 रन बनाए। अंतिम ओवर में रिंकू सिंह 9 और अनुकूल रॉय ने 4 रन की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को 7 गेंद शेष रहते जीत दिलाई। कॉर्बिन बॉश ने मुंबई के लिए सर्वाधिक 3 विकेट लिए, जबकि दीपक चाहर, गजनफर और जसप्रीत बुमराह को 1-1 विकेट मिला। मनीष पांडे को उनकी पारी और शानदार फील्डिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने प्लेऑफ की दौड़ में अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। अब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी और राजस्थान और पंजाब के अगले मैचों के परिणाम पर निर्भर रहना होगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
तो कहा जा सकता है कि कोलकाता अपने कल के मैच के बाद आने वाले लीग के सभी मैच बहुत ध्यान और सतर्कता से खेलेगी भी और देखेगी भी। और अब आईपीएल के बाद रुख करते हैं हॉकी के टर्फ का, जहां हॉकी इंडिया ने आज आगामी पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। जापान के काका मिघारा में 29 मई से 6 जून तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए केतन कुशवाहा को टीम का कप्तान बनाया गया है। आइए सुनते हैं किन किन खिलाड़ियों को इस टीम में जगह मिली।
सावन कुमार और आयुष रजक गोलकीपर की भूमिका में टीम में शामिल किए गए हैं, जबकि डिफेंडर के रोल के लिए अंश बहुता, अरमान सोरेंग, आशीष तानीपूर्ति, अर्शदीप सिंह, अवि मानिकपुरी और रोमित पाल को चुना गया है। मिडफील्ड की जिम्मेदारी राहुल यादव, प्रेमचंद सोए, वरिंदर सिंह, करण गौतम और सिद्धार्थ बेन के कंधों पर होगी। वहीं कप्तान केतन, आकाशदीप, गाजी खान, शाहरुख अली और प्रहलाद राजभर के साथ फॉरवर्ड की भूमिका में नजर आएंगे। भारत को पूल ए में दक्षिण कोरिया, मेजबान जापान, चीनी ताइपे और कजाकिस्तान के साथ रखा गया है। भारतीय टीम अपने पूल स्टेज कैंपेन की शुरुआत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ करेगी। इसके बाद भारत 31 मई को मेजबान जापान से, 1 जून को साउथ कोरिया से और 3 जून को चीनी ताइपे के साथ मुकाबला करेगी। पूल ए और पूल बी की टॉप 2 टीमें सीधे 5 जून को होने वाले सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। वहीं टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 6 जून को खेला जाना है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
तो कह सकते हैं कि एक बड़ी प्रतियोगिता, क्योंकि ये पूरा वर्ष बड़ी प्रतियोगिताओं का है, जहां एशिया गेम्स और कॉमनवेल्थ जैसे बड़े आयोजन होने हैं और सभी खेल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब हॉकी के बाद चलते हैं मलेशिया के कुआलालंपुर, जहां बैडमिंटन कोर्ट में आज मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में भारत की अश्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। आइए सुनते हैं प्रतियोगिता में आज खेले गए भारतीय खिलाड़ियों के मुकाबलों का पूरा हाल।
अश्मिता चाहिला ने क्वालिफायर और राउंड ऑफ 32 के बाद आज प्री क्वार्टर फाइनल में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। युवा अश्मिता ने सिर्फ 27 मिनट चले मुकाबले में मलेशिया की गोह जिन वेई को 21-13, 21-16 से हरा कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब उनका सामना डेनमार्क की 8वीं वरीयता प्राप्त लाइन होजमार के जर्सफेल्ट से होगा। हालांकि अश्मिता के अलावा भारत का कोई भी खिलाड़ी जीत दर्ज नहीं कर सका। मालविका बंसोड़ डेनमार्क की केजर्सफेल्ट से 21-16, 8-21 और 15-21 हार कर दूसरे दौर में बाहर हो गई थी। वहीं देविका सिहाग चीन की चेन युफेई से 16-21 और 13-21 से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। इस बीच एमआर अर्जुन और हरिहरन अमस्कारुनन की हार के साथ ही भारत का मेंस डबल अभियान भी समाप्त हो गया है। मिक्स डबल्स में सात्विका रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा की जोड़ी अमेरिका के प्रेस्ली स्मिथ और जेनी गाय के हाथों 12-21 और 25-27 से हार का सामना करना पड़ा। अब इस टूर्नामेंट में अश्मिता एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनसे भारत को उम्मीदें होंगी। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
तो भारतीय उम्मीदों का भार अपने कंधों पर लिए अश्मिता लगातार क्वालिफायर्स, फिर राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16 में जीत दर्ज करते हुए अब राउंड ऑफ 8 की तरफ पहुंच गई हैं, यानी क्वार्टर फाइनल, जहां वो अपना कल मुकाबला खेलने उतरेंगी। और अब बात करते हैं गोरखपुर की, जहां आज पानी की धार के बीच खिलाड़ी पदकों के लिए दौड़ लगाते हुए नजर आए। 46वीं जूनियर राष्ट्रीय रोविंग प्रतियोगिता का आज गोरखपुर के रामगढ़ ताल में समापन हो गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सहित 20 राज्यों की टीम ने चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। समापन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया और कहा कि उत्तर प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स के एक बड़े आयोजन स्थल के रूप में सामने आ रहा है।
रामगढ़ताल नेशनल चैंपियनशिप के लिए यहां भी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। रामगढ़ताल पर 2026 में एशियन गेम्स की तैयारी के लिए भारतीय महिला रोइंग टीम का जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर है आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाटर स्पोर्ट्स का एक सेंटर भी विकसित किया है। तो रामगढ़ताल इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स के हब के रूप में आज अपनी एक नई पहचान बना चुका है।
तो नई पहचान बनाता हुआ रामगढ़ ताल रोज नए कीर्तिमान और कमाल स्थापित कर रहा है। और अब इन खेलों पर अधिक अपडेट के साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रेमचंद। प्रेमचंद, आज गोरखपुर में किस किस टीम की नौका पार लगते हुए नजर आई है और बताइए कि आज के मुकाबलों के नतीजों में कौन कौन सी टीम बाजी मारते हुए दिखी।
जी जी जी, बालक वर्ग में अपना दबदबा कायम रखते हुए आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी ओवरऑल चैंपियन बनी, जिन्होंने 2 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। बालिका वर्ग में शानदार प्रदर्शन के दम पर मध्य प्रदेश ने 2 स्वर्ण 1 रजत व 1 कांस्य के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन टीमों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की टीम ने भी इस बार एक गोल्ड मेडल जीता है। बालक वर्ग के क्वाड्रपल स्कल के फाइनल में यूपी की टीम विजयी रही। इस मुकाबले में दूसरे स्थान पर बंगाल और तीसरे स्थान पर उड़ीसा की टीम रही।
जी प्रेमचंद, हमें इस मैदान के बारे में भी बताइए कि बड़ी रोचक बात है कि गोरखपुर का ये मैदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर रहा है और राष्ट्रमंडल तक के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहा है।
जी 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 जी, जैसा कि आपने अभी सुना, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि रामगढ़ ताल जो है वाटर स्पोर्ट्स हब के रूप में बन चुका है, एक वाटर स्पोर्ट्स हब बन गया है। यहाँ पर 49 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। यूपी में देखे तो वाटर स्पोर्ट्स की संभावनाएं बहुत समृद्ध है। प्रदेश में गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, राप्ती जैसी नदियां हैं जहां वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश में बलिया, कुशीनगर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, कानपुर जैसे शहरों में वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ओवरऑल गोरखपुर में बहुत सारी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया था, जिसमें कम से कम 30,000 दर्शक जो है का ये स्टेडियम बनेगा। जी
बिल्कुल, एक बेहतर केंद्र के रूप में उभरते हुए भारत के तमाम शहर और उसी कड़ी में गोरखपुर भी। और अब गोरखपुर से चलते हैं झारखंड के रांची की तरफ, जो कि तैयार है नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन की मेजबानी के लिए, जो कल से 25 मई तक आयोजित की जाएगी। ओलंपियन मुरली श्रीशंकर, अन्नू रानी, तजेंद्र पाल सिंह तू, सर्वेश कुशारे और तेजस्विनी शंकर जैसे भारतीय दिग्गज एथलीट भी इस प्रतियोगिता में भाग लेते नजर आएंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
भारत की प्रमुख घरेलू एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में से एक नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन, जिसे आमतौर पर फेडरेशन कप के नाम से जाना जाता है, बिरसा मुंडा स्टेडियम में होने वाले इस साल का यह आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए एकमात्र चयन ट्रायल के तौर पर काम करेगा। राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने हैं। नीरज चोपड़ा की गैर मौजूदगी में सचिन यादव, रोहित यादव और किशोर जेना कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में क्वालिफाई करने के लिए एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। वहीं महिलाओं में अन्नू रानी भाला फेंक स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगी। लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर पुरुष वर्ग में और शैली सिंह महिला वर्ग में चुनौती पेश करेंगी। पुरुषों के ट्रिपल जंप में अब्दुल्ला बूबकर और शॉट पुट में तेजिंदर पाल सिंह तूर खेलते नजर आएंगे। राजेश रमेश 400 मीटर, मोहम्मद अफसल 800 मीटर और सर्वेश कुशारे ऊंची कूद में हिस्सा लेंगे। महिलाओं के 400 मीटर स्पर्धा में विथया रामराज एक्शन में नजर आएंगी, जबकि तेजस्विनी शंकर कथानॉल में हिस्सा लेंगे। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
तो रोमांच तैयार होने को बेकरार है और अब बात करते हैं हॉकी कोच बलदेव सिंह की, जिनको 25 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित करेंगी। 75 वर्षीय बलदेव सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बसे एक छोटे से शहर शाहबाद मारकंड को बेहतरीन हॉकी प्रतिभा का केंद्र बना दिया है। सुनते हैं बलदेव सिंह के जीवन पर आधारित ये रिपोर्ट।
जिंदगियां सवारना खेल खेल में, श्री बलदेव सिंह पद्मश्री 2026। 15 नवंबर 1950 को लुधियाना के किसान परिवार में जन्मे बलदेव सिंह का बचपन आर्थिक तंगी में बीता।
मैं उस समय बहुत छोटा था जब मैंने पहली बार मैदान में राष्ट्रीय स्तर का ऐसा मैच देखा जिसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल रहे थे। उन्हें देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और मेरे मन में ये विचार आया कि मैं भी एक दिन ऐसा खिलाड़ी बनूं।
बलदेव सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बेंगलुरु से हॉकी कोचिंग का डिप्लोमा प्राप्त किया और 1981 में हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करके हरियाणा के शाहबाद मारकंडा में कोच के पद पर आ गए। शाहबाद उनकी कर्म भूमि बन गया और उन्होंने सबसे पहले यहाँ हॉकी ग्राउंड तैयार किए। बलदेव सिंह जी के कड़े परिश्रम और अनुशासित ट्रेनिंग से उनके खिलाड़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने लगे। जल्दी ही वे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच भी नियुक्त हुए और टीम को कई सफलताएं दिलाई।
मैंने देखा कि लड़कियां भी खेलना चाहती हैं, पर उनके सामने कई अड़चनें थीं। हमने उनके परिवार वालों को समझाया।
उन्होंने बड़ी गाड़ी ली बच्चों की मदद के लिए। जब प्रतियोगिताएं दिल्ली या कहीं दूर होती थी तो ये लड़कियों को घर लेने और छोड़ने भी जाते थे और आवश्यकता पड़ने पर ये आर्थिक सहायता भी देते थे।
हॉकी खेलने से यहाँ के बच्चों को मान सम्मान और जॉब भी मिली। लड़कियाँ आगे आएंगी तो इंडिया आगे आएगा।
बलदेव सिंह जी की ट्रेनिंग में लड़कियों की स्कूल टीम ने भी कई टूर्नामेंट जीते और आगे चलकर देश का गौरव बनी।
मेरे लिए वो सिर्फ एक कोच नहीं थे, मेरे लिए वो एक गाइड, मेंटोर और एक फादर फिगर, जिसको फिक्र रहती थी कि हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए।
उस समय हमारे शाहबाद में कहावत थी कि किसी के घर बेटी पैदा हो तो उसे बलदेव जी के मैदान में छोड़ दो, उसकी जिंदगी अपने आप संवर जाएगी।
शाहबाद से इतने खिलाड़ी निकलने लगे कि इसे हॉकी की नर्सरी कहा जाने लगा। सन 2017 में बलदेव सिंह जी भारत की ओलंपिक टास्क फोर्स में भी शामिल हुए और भारत की स्पोर्ट्स पॉलिसी में योगदान दिया।
मेरी पूरी जिंदगी हॉकी और खिलाड़ियों के लिए है।
सच ही है, बलदेव सिंह गुरु नहीं, खुद गुरुकुल है। श्री बलदेव सिंह पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार।
तो कोटि कोटि नमस्कार बलदेव सिंह जी को, जो कि हॉकी की एक पूरी पीढ़ी के लिए किसी शिल्पकार से कम नहीं और उनके बनाए हुए तमाम खिलाड़ी आज जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतते हैं, देश का मान बढ़ाते हैं, तो शायद बलदेव सिंह जी का सीना भी फक्र से चौड़ा होता होगा। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की, खेल मैदान की तमाम खबरों के साथ। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन के ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।